सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि माया बहिर्योदि भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानन्द भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर हर। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं, जिस ग्रंथ में ऐसी युक्तियां बताई गई हैं, ऐसे दृष्टांत बताए गए हैं कि उन युक्तियों के द्वारा सब संसार परमात्मा ही रूप है, इसको जानने में कोई कष्ट होता नहीं है। सब के भीतर एक ही परमात्मा अनुस्वीत है, इसको भी जानने में कोई कष्ट होता नहीं। जैसे यहां बताया गया किस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं, तीन हैं, वैराग्य का, बोध का और भक्ति का। वैराग्य का प्रकरण पहले के सालों में हो गया है, बोध का प्रकरण चल रहा है, पिछले साल से शायद चल रहा है। बोध में मैं जीव जगत और ईश्वर के विषय में ज्ञान करना है। जानते हैं जीव ईश्वर के भीतर विशेष कोई अंतर है नहीं, क्या है जीव ईश्वर भाई? जो अज्ञान अविद्या और अविद्या तो दिखती नहीं है, इन अविद्या का कार्य दिखता है। अविद्या का कार्य कौन है? यह जगत है। तो जो जगत के बस में हो गए उसका नाम जीव है, और जो जगत को बस में कर ले, बस में करने का मतलब ऐसा नहीं कि मेरे अनुसार सारी दुनिया हिलेगी डुलेगी। बस में करने का मतलब क्या हुआ? जगत का जिसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े उसका नाम क्या है? ईश्वर है। जगत अविद्या और अविद्या का कार्य जगत का जिसके ऊपर प्रभाव न पड़े, इसका मतलब यह जगत उसके बस में है। भाई देखो, जगत कोई उस अधिष्ठान से अलग वस्तु होवे, सत्ता होवे, तो उसके बस में होवे, उसका गुलाम होवे, जगत उस पर शासन करे। अब रस्सी पे जो सांप दिख रहा है, उस सांप पे हम क्या शासन करेंगे बताओ? उस सांप को हम कहां नचाएंगे, कहां ले जाएंगे, किस गले में डालेंगे, किस सांप को? जो सर्प कहां दिख रहा है, तो बस रस्सी पे जो सर्प दिख रहा है उस सर्प का भय न होवे, यही उस सर्प को बस में करना है। क्योंकि भाई असली सांप होवे तो उसको बस में करने के लिए तो कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, लेकिन जो सांप ही नकली है बताओ उसको बस में करने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? बस नकली सांप का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, यही उसको बस में करना है। तो इस जगत का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े तो आप क्या बन जाएंगे? ईश्वर बन जाएंगे। और जब तक जगत का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है तो हम जगत के क्या हैं, अधीन हैं, बस में हैं, तब तक हम क्या हैं, जीव हैं। तो बोध करना है अपने आप को इस जगत के, मतलब यहां दोनों में ध्यान देना, चाहे ईश्वर भाव में चाहे जगत भाव में, दोनों में जगत वो जीव भाव में चाहे ईश्वर भाव में जगत है, जगत है। इससे जो ऊपर उठ जाए, इस मतलब न अधीन की वृत्ति होवे न गुलामी की वृत्ति होवे, जो दोनों से ऊपर उठ जाए वह कौन है, ब्रह्म है। तो इस भाव में जो व्यक्ति निष्ठ हो जाता है वह व्यक्ति ही सारे संसार को ब्रह्म रूप देखता है, क्योंकि सारा संसार ब्रह्म ही रूप है, एक ही सत्ता से सब चल रहा है। ये सब हम कई उदाहरणों से बता दिए, एक ही जल डालते हैं कहां, कदली, केला, चंपा और कोई स्वादिष्ट फल में, वही जल मूली में, लहसुन में और प्याज में डालते हैं तो उसी जल से कहीं खुशबू पैदा होती है, कहीं कहीं कड़वापन होता है, कहीं मिठास। बताओ एक ही जल से गन्ना कितना मीठा और उसी जल से मिर्ची कितनी तीखी, आप सोच लो। लेकिन जल में कोई भेद है क्या, तो एक ही सत्ता सबके भीतर अंशुत है और जिसके भीतर जैसे अंतःकरण होते हैं वैसे ही हर प्रकार का काम करता है। वहां बताया एक ही सूत्रधार जैसे अनेक प्रकार की कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार से एक ही आत्मा सबके भीतर अंशुत होकर के सबके अंतःकरणों को नचा रही है, सबके इंद्रियों को सत्ता दे करके शब्द स्पर्श रूप रस का गंध, गंध का ज्ञान करा रही है। और कई उदाहरण बताए, एक उदाहरण बताया जैसे एक इच्छु माने गन्ना है, गन्ने का विकार क्या है, गुड़ खाड़ शर्करा मिश्री, दूध का ही विकार आपने कितना देख लिया, हाँ बहुत देख लिया ना, क्या क्या दूध दही मट्ठा पनीर मावा घी मक्खन है ना, कितने देखे, ये सब क्या है, घी है। एक युक्ति से देखा मिट्टी का ही विकार, पत्ता फल फूल मांस रक्त हड्डी सब किससे बने हैं, बोलो भाई ये सब कल विचार कर लिए। उसी प्रकार से इस संसार में जो भी दिख रहा है, अनेक स्वभाव अनेक आकार अनेक प्रकार के व्यवहार, कोई ऊंचा कोई नीचा, सब एक आत्म सत्ता से ही इनकी सत्ता हो रही है। वास्तव में उस आत्म सत्ता से पृथक दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। जैसे हम अज्ञान बस अभिमान कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं है। हमारा एक मित्र है, उसने कहा महाराज जी मैं भी किसी महात्मा से कम नहीं हूं। 45 साल उसकी बीवी मर गई कैंसर से, अभी दोबारा फिर शादी कर लिया कह रहा है, जबकि उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, एक बेटी की भी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी दोबारा शादी कर लिया। फिर कहेगा हम तो स्वामी जी गृहस्थी हैं, आप जैसे थोड़े हो सकते हैं। और जब कोई बात आती है तो क्या बोलता है, स्वामी जी हम भी किसी महात्मा से कम नहीं है, 12 साल से मैं जमीन में ही सोता हूं। कहां सोता है, हमने कहा भाई आज तक मैंने किसी आदमी को ऐसा देखा नहीं जो आसमान में सोता हो, आपने देखा है क्या किसी आदमी को आसमान में सोते हुए, बोलो भाई। तो सब कहां सोते हो, अरे भाई तखत है तो वो भी क्या है, यदि तखत है वो भी जमीन ही नहीं है बेटा, चारपाई हो भी जमीन नहीं रही हुई, तो चलो हम तब भी माने जमीन पे तब सो, जब 10-20 किलो मिट्टी ले आओ अपने बढ़िया संगमरमर के फर्श पर क्या कर दो, बिछा दो, और उसके ऊपर कोई चटाई कोई गद्दा मत बिछाना, और अपने शरीर पे भी कपड़ा न रहे, तब सो तो माने कहा मिट्टी पे सो रहे हो, लेकिन ऐसा सोते हो क्या। तो हम केवल झूठा अभिमान करते हैं कि मैं आसमान में सो रहा हूं या धरती पे सो रहा हूं, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम झूठा अभिमान कर लेते हैं संसार में, ये अलग है वो अलग है, लेकिन इस सारे संसार में उस परमात्मा की सत्ता किसी वह दूसरी कोई सत्ता, जैसे दुनिया में कोई भी वस्त्र हो जाए, चाहे टोपी हो जाए चाहे कुर्ता हो जाए चाहे पैजामा हो जाए चाहे मोजा हो जाए, जो बदबू मारता रहता है। सब वस्त्र सूत से अलग हो सकते हैं क्या? क्यों भाई, सारे वस्त्र में सूत ही है, सूत के सिवा दूसरी कोई सत्ता? ऐसे ही सारे संसार में देखो, उस ब्रह्म के सिवा, उस परमात्मा के सिवा दूसरी कोई सत्ता न यहां कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। तो हम व्यवहार चलाने के लिए ऊंचे नीचे का क्या कर दिए हैं, भाव आरोपित कर दिए हैं, जबकि वास्तव में एक आत्म सत्ता से ही सबकी सत्ता है। लेकिन जब तक इसका हमें बोध नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर राग द्वेष सुख दुख भय आज की वृत्ति बनी ही रहेगी। इसको भी बताया, एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, कंधे पर कोई पका हुआ भोजन होवे, कैसा भोजन, सिद्ध अन्न होवे, जब तक कंधे पे रखा हुआ है तब तक बताओ उस भोजन के छू जाने का डर है नहीं डर है, अथवा भोजन के गायब हो जाने का डर है नहीं डर है? रास्ते में जाते हुए कंधे पे भोजन रखे हो, उस भोजन को कोई चांडाल छू ले वे, अथवा वह भोजन कहीं चोरी हो जाए, जब तक वह खाता है नहीं तब तक उसको स्पर्श का भय पीड़ित करता रहेगा, खो जाने का डर पीड़ित करता रहेगा। यदि उसी भोजन को आप खा जाओ, पेट में रख लो, तो फिर क्या करो, कोई भी आपके बगल में बैठे उस भोजन को छूने का डर रहेगा क्या? तो जब तक इस संसार को अपने उदर में डाल नहीं लोगे, उदर माने सारे संसार को अपना ही स्वरूप नहीं समझ लोगे, तब तक इस संसार के खोने और पाने का क्या बना रहेगा, डर बना ही रहेगा, भय बना रहेगा। और जिस दिन सारा संसार आपके उदर में स्थित हो जाएगा, उस दिन आपके सारे भय अपने आप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अपना पेट थोड़ा बढ़ा लो। क्या करना है, पेट बढ़ाना है, कितना पेट बढ़ाना है, इतना बढ़ा लो कि सारा, जैसे भगवान ने अपना पेट नहीं बढ़ाया क्या, उनके मुख में ही क्या दिख रहा था, ये तो प्रतीक है, हम सब ही उससे अलग नहीं है, उसी के मुख में समाये हैं। तो आपके भी मुख में, मुख माने कम से कम आपकी बांगड़ी में तो आ जाए कि सारा संसार क्या है, मेरा ही रूप है, मेरे से पृथक है ही नहीं। अब पेट में आ जाए मतलब आपके अपने अनुभव में आ जाए, पेट में मुख में आने मतलब कम से कम मुख से बोलना तो सीख जाओ, भाई सारा संसार मेरा अपना ही रूप है। अब पेट में आ जाए मतलब क्या हुआ, सारे संसार को अपने ही रूप में अनुभव कर लेना, एक विराट रूप है भगवान का, तो ये विराट रूप आप दिखा सकते नहीं दिखा सकते, भाई जान सकते नहीं जान सकते हो कि सारा संसार कहां है, मेरे ही अपने स्वरूप के भीतर अनुसूयित है। कल मैंने आपको दो बताई बातें, शिष्य का जन्म दो जगह से होता है, एक कहां से होता है, मां के गर्भ से, और मां के गर्भ की सीमा है बहुत, कितना बच्चा आ सकता है बताओ, एक या दो बस, बहुत ज्यादा। और दूसरा जन्म होता है गुरु के गर्भ से, किसके, तो गुरु के गर्भ में कितने बच्चे आ जाते हैं, 40-50 आ जाते होंगे गुरु का गर्भ, माने गुरु की एक आश्रम की जो सीमा है। और सुखदेव जी महाराज कहां रहे 12 साल तक, कहां रहे, मां के पेट में, अरे गुरु के पेट में रहे, मतलब आश्रम की सीमा के नहीं। हमें देखो, आप युक्ति देखो, हम कहते 12 साल में जब सुखदेव उठे तो चल दिए, एक इतना बड़ा बच्चा एक दिन भी रख सकता है क्या पेट में, बताओ, मां मर गई होती, वो भाव है, उस भाव को हम समझते नहीं है। मैं कल भी बताया था, कोई सी भी साधना करो तो 12 साल साधना करने में लगते हैं, कोई भी काम करो, आप व्यापार करो तो 12 साल में आप क्या हो जाओगे, अपने व्यापार में पारंगत हो जाओगे, इसके पहले नहीं पारंगत होगे। पढ़ाई भी करोगे ना तो कितने साल करो, 12 साल अध्ययन करो वेदांत का, कुछ भी पंडित बन जाओगे पक्का। अपने उस काम में सिद्ध होने के लिए कोई भी काम करो तो कितने साल लगते हैं, तो हमारे सुखदेव जी महाराज कितने साल रहे, 12 साल कहां रहे, गुरु के गर्भ में, गुरु का गर्भ माने गुरु के, जैसे अब गर्भस्थ बच्चे की अपनी कोई चलती है क्या, वो किसके अधीन रहता है, मां के अधीन रहता है। ऐसे गुरु के गर्भ में स्थित जो शिष्य होवे न, वह अपनी चलावे न, गुरु जैसी साधना बतावे, जैसा कर्म बतावे, वैसा वो करे। अब 12 साल का तक साधना करने के बाद जब वह सिद्ध हो गए, कौन, सुखदेव जी महाराज, तो गुरु के गर्भ से क्या निकले, बाहर निकल गए, और किसके गर्भ में समा गए, सारे संसार को अपने गर्भ में ले लिए। अर्थात अब मेरा आश्रम, मेरे गुरु, मेरी गुरु माता, ये सारे भाव को हटा करके साथ अब विश्व ही किसका हो गया, मेरा हो गया, इस भाव में स्थित हो गए। कौन ये न समझे ना, इस वाले घर में रहे होंगे, ठीक है ना, इस वाले घर में तो एक दिन भी ज्यादा हो जाएगा डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता है। चलो तो हमें क्या करना है, मानुष मतंग महिष मनुष्य हाथी, महिष माने भैंस, कुत्ता, सुअर आदि में अनुसूयित एक परमात्मा को जो देख लेता है वह व्यक्ति ही अद्वय आनंद का भोग भोगता है, और दूसरे व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति। तो सबके भीतर किसको देखो, बताओ भाई, एक हरियाणा में है शाहबाद, वहां एक भगत जी हैं, बहुत एक मोटा सा आदमी था, उसको उन्होंने नमस्कार किया, भगत जी नमस्कार। तो कहा भाई मेरे को भगत क्यों बोल रहे हो, मैं तो बड़ा पापी हूं, आप मेरे को नमस्कार क्यों कर रहे हो। तो इसने कहा मैं तुम्हें कहां नमस्कार कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे रूप में बैठे हुए उस परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूं, कि जो परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है लेकिन इतने बड़े स्थूल शरीर को उठाए फिरता है। कभी कभी देखना आप, वह परमात्मा स्थूल एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म इसलिए है कि इंद्रियों की पकड़ में आने वाला है ही नहीं, इतना सूक्ष्म है, कोई अंगुल नहीं है, कोई कंग नहीं है उसमें, निरवयव है। कैसा है, निरअवयव है, लेकिन जितना स्थूल जगत दिख रहा है सारे संसार को उठाए हुए कौन है बताओ, सारे संसार को आधार देने वाला कौन है, परमात्मा है। कभी कभी आश्चर्य करो, इतने सूर्य चंद्रमा तारे, इतने ग्रह नक्षत्र, अपना तो कितना भी खोज ही नहीं हो पाई है, वो क्या उगंत स्थली पे, दूसरे ग्रहों पर भी जीव है, दूसरे ग्रहों पर भी जीव की सत्ता तो सिद्ध हो गया है, लेकिन किस ग्रह पर जीव है अभी हमें ज्ञान नहीं हो पाया है। तो सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, तो इन सबका संचालन कराने वाला कोई न कोई सत्ता है कि नहीं है बताओ। तो हम सबके रूपों में किस सत्ता को देख लो है? हम कहते हैं भगवान कुत्ते के रूप में कौन बैठा है, कि सड़ा हुआ मांस जिसको सब फेंक देते हैं, उसको खा करके क्या कर देता है, उसको भी पचा देता है कौन, उसके भीतर अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासित है, प्राणापान समायुक्त पचामन्न, हर प्रकार के भोजनों को पचाने वाला कौन है, प्रांग रूप से विद्यमान कौन, वह परमात्मा, लेकिन प्राणी नहीं, प्रांग रूप से विद्यमान, प्रांग रूप से विद्यमान कौन है, सबके भीतर कहीं प्रांग रूप से, भाई जल तो जल है ना, कहीं बर्फ रूप से है, कहीं भाप के रूप से है, कहीं गर्म गर्म जल के रूप में है, कुनकुना है, कहीं ठंडा है, लेकिन है सब किसके व्यक्ति हो रही है, जल की है ना, तो वही परमात्मा कहीं प्रांग रूप से है, वही परमात्मा कहीं पृथ्वी रूप से है, वही परमात्मा कहीं अग्नि के रूप से है, इन सब के भीतर किसकी सत्ता है। तो जब तक इस अद्वय को देख लो तो आप ज्ञानी हो जाओगे, ज्ञानी नहीं ज्ञान स्वरूप हो जाओगे, क्या हो जाओगे, ज्ञानी में भी अलग हो जाओगे, लेकिन ज्ञानी बने तो ज्ञानी दूसरा खड़ा हो जाएगा, इसलिए ज्ञानी नहीं बनता है, उस तत्व को जानने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, ज्ञान स्वरूप ही हो जाया करता है। यहां तक अद्वैत का निरूपण किया गया, अद्वैत निष्ठा बताया गया, लेकिन इस निरूपण में कुछ शंकाएं पैदा हो गई, अब कुछ श्लोकों के द्वारा उन शंकाओं का समाधान करते हैं। जैसे एक शंका 128वें श्लोक में आई, पहले शंका था 128वां श्लोक में था कि एक ही सूत्रधार धागे पकड़ करके नचाने वाला छिप करके जैसे हर प्रकार की कठपुतलियों को क्या करता है, नचाता है, तो कठपुतलियां किसके अधीन है, तो हम सब क्या है, कठपुतलियां हैं, हम सबको नचाने वाला कौन है, परमात्मा है। तो किसी को इधर पांव घुमा रहा है, किसी को उधर पांव घुमा रहा है, तो कठपुतली का दोष है कि उस परमात्मा का दोष है, बताओ भाई, हम पाप करते हैं अथवा पुण्य करते हैं तो बताओ किसका दोष हो जाएगा, हमारा दोष है कि नचाने वाले का दोष है, बताओ हैं? भाई संशय आ रहा है कि नचाने वाले का दोष हो रहा है, हम यही तो कह रहे हैं ना, उमादार योषित की नाई सबह न चावत राम है गोसाई, बोलते नहीं बोलते हैं। अथवा आप लोग भी कहते हो रोज, महाराज जी ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी, तो हमारी जवानें हिल रही, किसकी इच्छा हिल रही होंगी हम। और ऐसा नहीं, स्तुतियों में कई जगह आ जाता है, बृहदारण्यक में आता है, यदि किसी को ऊंचा बनवाना होता, ऊंचा उठाना होता है, तो परमात्मा उससे क्या करवा लेता है, अच्छा काम करवा लेता है, और वो व्यक्ति संसार में क्या हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। और किसी को नीचा करने वाला होता है तो परमात्मा उस व्यक्ति से क्या कर लेता है, नीचा करवा लेता है, वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। तो बताओ, इन सारे दोषों का भागी जब परमात्मा ही अच्छे बुरे सभी कामों को करवा रहा है, तो पाप पुण्य का भागी किसको होना चाहिए, बोलो भाई, उस परमात्मा को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जीव क्यों होता है बताओ, उस पाप पुण्य से सुख दुख भी किसको होना चाहिए, उस परमात्मा को होना चाहिए, जीव क्यों भोगता है। यह तो यही हो गया कृतहानि अकृत अभ्यागम, हमने जो कुछ किया उसका फल तो हमें नहीं मिला, और जो हमने कुछ किया नहीं उसका सारे का सारा फल क्या हुआ, हमने कुछ किया नहीं कराया उसने जबरदस्ती डंडे मार मार करके, पाप पुण्य सुख दुख कौन भोगूं, मैं भोगूं। तो भाई इसका क्या समाधान है, इसका समाधान क्या है, आपको लगता है कुछ, तो इसको बता रहे हैं, कल मैंने बता दिया था, अब वही दिन करना है, परमात्मा की इच्छा से नहीं, ध्यान देना है, वहां थोड़ा बदल लेना, परमात्मा की सत्ता से अच्छे बुरे सब काम हो रहे हैं, इच्छा नहीं, क्या है, क्योंकि परमात्मा जो ना इच्छा अनिच्छा से परे है, उसमें न कोई इच्छा है न कोई क्या है अनिच्छा है, वो उससे क्या है परे है। हाँ सत्ता है परमात्मा की, कहाँ होनी चाहिए, सत्ता से हर प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसकी इच्छा नहीं है, इच्छा तो क्या है, हर एक व्यक्ति के अपने अंतःकरणों की क्या हो जाती हैं, इच्छाएं हैं। इसको बता रहे हैं 133वें श्लोक में, 133। यदवत सूर्ये अभ्युदते स्वव्यवहारं जनः कुरुते तं न करोति विवस्वान् न कार्यति तदवत आत्मापि। यदवत माने जिस तरह से, जिस प्रकार से सूर्य अभ्युदते, सूर्य के उदय हो जाने पर स्वव्यवहार, जन स्वव्यवहारम कुरुते, संसार के हर प्राणी अपने अपने व्यवहारों को करना शुरू कर देता है। ब्राह्मण आदि है तो क्या करेगा, जप यज्ञ की तैयारी करना शुरू कर देगा, सुबह सुबह नहाओ धो ध्यान करो पूजा पाठ करो। चोर है तो क्या करेगा, अपनी चोरी की तैयारी। वेश्या है तो अपना सच समझ करके बैठ जाएगी अपने धंधे में, वो भी चल देगी। तो जो भी हर सूर्य के उपस्थिति मात्र से, उदय होने से जीव अपने संस्कारों से अनेक प्रकार के कार्यों में लग जाता, नहीं लग जाता। अब बताओ जो काम कर रहा है सूर्य की उपस्थिति मात्र से, तम न करोत विवस्वान, उस काम को क्या सूर्य करते हैं, क्या सूर्य की सत्ता से हो रहा है, लेकिन सूर्य तो करते नहीं होंगे, तो कराते होंगे, कहते न कार्यति, न सूर्य करते हैं न सूर्य कराते हैं, किसी को कहते हैं क्या उठो मैं आ गया हूं, तेरी औकात तो सो रहा है मेरे आने के बाद भी, वो न जगाता है, आप उसकी उपस्थिति मात्र से पता नहीं तुरंत जा रही, बाप रे इतना देर हो गया, जल्दी जल्दी उठो जल्दी जल्दी तैयार हो, उसने कभी कहा क्या जल्दी करो, उसकी उपस्थिति मात्र से ही आप सारे काम करना शुरू कर देते हो, नहीं कर देते। तदवत आत्मा अपि, उसी प्रकार से आत्मा की उपस्थिति मात्र से ही, आत्मा की सत्ता मात्र से ही, जैसे उसके ऊपर इंद्रियां आती हैं तो अपने अपने कामों में क्या करना शुरू कर देती हैं, सब अपने अपने कामों में लग जाया करती हैं। इसलिए जैसे आत्मा कर्ता नहीं बनता तो आत्मा भोक्ता भी नहीं बनता, यदि आत्मा कर्ता बनता तो भोक्ता भी बनता, मतलब जैसे सूर्य कर्ता बनता तो भोक्ता भी बनता, जब मैंने कुछ किया भी नहीं तो मैं भोगने वाला भी, हम तभी भोगते हैं जब हम कर्ता बनते हैं, और जब हम कर्ता न बने तो हम भोक्ता भी नहीं बनेंगे, पक्का है। भोक्ता बनना किसके अधीन है? कर्ता के अधीन है। यदि आपके भीतर का कर्ता भाव चला गया तो भोक्ता भाव अपने आप क्या हो जाएगा? चला जाएगा। देखो भाई, आप और किससे क्या अपेक्षा करते हो बताओ? पड़ोसी का लड़का हमें पानी देवे, हमें खाना देवे, हमें पगार देवे, आपकी कोई अपेक्षा होती क्या? क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, इसलिए वहां कर्तित नहीं है, तो उसके प्रति हमारा भोक्तृत्व। लेकिन अपने बेटे के प्रति, बोलो भाई, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा करके क्या बनाया? इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, आपके भीतर क्या आ गया? अच्छा बताओ, आप पढ़ा लिखा करके किसी को डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हो क्या? मेरे बता दो, यदि आपके पढ़ाने लिखाने से सब डॉक्टर इंजीनियर बन गया होता तो यहां कोई चपरासी नहीं बनता। बोलो भाई, सब माँ बाप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? यदि उस बच्चे के पास अकल न होती तो तुम 10 नहीं 50 ट्यूशन रख दोगे, बताओ पढ़ सकता है क्या? तो आपने पढ़ाया क्या बताओ? बोलो भाई। अच्छा, मैंने, माताएं बोलती हैं, मैं जानती तो ईसा निकलता पैदा होते दूध नहीं जहर पिला देती, कभी कभी जब गुस्सा करती हैं। अच्छा, दूध पिलाना आपके बस की बात है क्या? बोलो भाई। अरे आपने नहीं पिलाया, सच बता रहा हूं, न आपने उस दूध को पैदा किया, ये शरीर की क्या हो गई? एक स्वाभाविक क्रिया हो गई। हम लोग गौशाला में गायों को देखते हैं, सुबह जब दूध नहीं निकलता ना गायों का, तो गायों को बड़ी व्याकुलता होती है। वो दूध निकल जाने के बाद उसको क्या मिलती है? बड़ी सुकून शांति मिलती है। ये भी एक शरीर का विकार ही है। जैसे आपको लघु शंका होवे, उसको रोके रहो न जाओ तो क्या हो जाओगे? पसीने पसीने हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। जैसे जाओगे तो आपके शरीर में क्या आ जाएगी? कि सुकून शांति हल्कापन हो जाएगा। ऐसे शरीर का ये भी एक विकार है क्या? मल मूत्र दूध पसीना थूक, ये सब शरीर के क्या है? विकार है। ये जब तक शरीर से निकलेगा नहीं तब तक आपको क्या होगी? अशांति बेचैनी होगी। तो गायें सुबह सुबह चिल्लाती हैं, बैं बैं चिल्लाती हैं। जब उनको गायों को दूध निकाल लेता है ना, तो गायें सुकून से अपना खाती हैं, घूमती हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। बताओ, उस दूध को हमने पैदा किया क्या? हमने पिलाया क्या? ये सारी क्रियाएं क्या हो रही है? स्वाभाविक हो रही है। लेकिन इन क्रियाओं के कर्ता कौन मान लेते हैं? हम मान लेते हैं। और कर्ता हम मान लेते हैं तो फिर भोक्ता भी बन जाते हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया तो मेरे लिए कर दूध का कर्ज। आजकल क्या होगा? दूध का कर्ज अदा करो, पता नहीं क्या क्या अदा करो। अच्छा, कहते मैंने तुम्हें खिला पिला करके इतना बड़ा बनाया, कहते हैं। अच्छा बता, बड़ा बनाने वाले आप हो क्या? यदि बड़ा बनाने वाले आप होते तो हर बच्चा 6 फुट का होना चाहिए, यहां कोई 3 फुट का होता ही नहीं, 4 फुट का होता ही नहीं, तो आपने बड़ा बनाया क्या? लेकिन आप कहते पाल पोस करके 6 फुट का मैंने कर दिया। अरे आपने किया क्या मेरे बता दो? बस आप कुछ करते नहीं हो, बस करने का क्या करते हो? वही अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति। अहंकार से विमोहित व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है, और जैसे कर्ता मान लेगा वैसे अपने आप क्या मान लेगा? भोक्ता मान लेगा। और जैसे भोक्ता मानेगा तो भोक्ता में तो दोनों भोग आएंगे। क्या आएगा? सुख भी भोगना पड़ेगा और क्या भोगना पड़ेगा? दुख भी भोगना पड़ेगा। आप अपने आप को जानो। सच बताऊं, मैं कुछ नहीं करता। मैं एक दिन आपको बताया भी था, आपको याद होगा, प्रवचन में तो आवर्तन हो ही जाता है क्योंकि आपको मजबूती भी हो आवे। राम हृदय स्त्रोत्र है, सुना ना? अध्यात्म रामायण में राम हृदय स्त्रोत्र, वहां पर क्या आता है? आपको याद है, वहां पर जब राम रावण को मार के वापस आते हैं तो जिस सारी बानर सेना भी राम के साथ वापस आती है, फिर जिसको जो दक्षिणा देना था राम ने सबको दे दिया। हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े थे, तो राम हनुमान जी को देख करके सीता की तरफ मुखरित होते हैं। सीता से कहते हैं कि हनुमान, हम सबका सच्चा वो है, निष्काम सेवक है, अब वह ज्ञान का अधिकारी है, हे देवी जाकर के मेरे स्वरूप का बोध कराओ। किसको? हनुमान जी को। तो सीता जी हनुमान जी को लेकर कोने चली गई, और क्या है, हमने आपको आज्ञा दे दिया, इनसे समझा दो, तो आप उनको लेकर उधर चले गए। तो सीता समझाती हैं कि राम का जन्म होना, ध्यान देना किसका, राम का जन्म होना, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करना, अहिल्या का उद्धार करना, धनुष को तोड़ना, मेरे साथ विवाह करना, खरदूषण को मारना, समुद्र बाली को मारना, सुग्रीव को राजा बनाना, और क्या किया, पुल बांधना, रावण को मारना, ये सब काम मैंने किया। लेकिन अज्ञान बस लोग राम पर आरोपित कर लेते हैं, लेकिन राम न आते हैं न जाते हैं, न संकल्प करते हैं न विकल्प करते हैं। राम तो आनंद मूर्ति असंग निर्लिप्त व्यापक आत्मा है। हाँ, मैंने भी नहीं किया, ध्यान देना, मैं भी राम पर अधिष्ठित होकर के सारे काम करती हूँ, राम के बिना भी नहीं कर सकती। मैं जो हूँ राम पर अधिष्ठित होकर के सारे काम मैंने किया, लेकिन लोग मेरे किए हुए काम को आरोपित कर लेते हैं किसके ऊपर, बोलो भाई, राम के ऊपर, आत्मा के ऊपर। जिसे आता जाता कौन है, बोलो भाई, शरीर, शरीर के आने जाने को हम आरोपित कर लेते हैं किसके ऊपर, अपने ऊपर, आत्मा या गया मैं आया। खाता पीता कौन है, प्राण, लेकिन प्राण के धर्म को हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं कि मैंने खाया मैंने पिया। सुखी दुखी कौन होता है, मन, लेकिन मन के धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, मैंने, मैं सुखी हूं मैं क्या हूं, दुखी हूं। तो दूसरे के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करके हम तमाम तरह के दुख के भागी बन जाते हैं, जबकि आप इन सब से क्या हो, अलग हो, परे हो। इसलिए आप कभी अपने आप को कर्ता क्यों मान सकते हैं क्या। भाई एक महात्मा थे, वो तो कहानी है, उसका तो आपने सुना ही है दृष्टांत। धनुष मैंने नहीं तोड़ा, किसी ने भी तोड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने नहीं तोड़ा, बस से ध्यान देना। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, प्रकृति ने काम किया, मैंने काम किया, क्या करना। वो लड़के ने गलत नहीं बोला है, गलत बोला है क्या, शिव का धनुष किसने तोड़ा, बोलो भाई, राम ने। फेल हो जाओगे अध्यात्म रामायण में, सीता जी करें, राम ने कुछ ना काम नहीं किया, धनुष किसने तोड़ा, सीता ने किया। लेकिन बच्चा कहता मैंने नहीं तोड़ा गुरुजी, क्योंकि मैं 7 दिन से स्कूल में नहीं आया हूं, मैं कैसे तोड़ सकता हूं। टीचर डंडा निकाले, तूने ही तोड़ा है, क्योंकि स्कूल में जो भी नुकसान होता है तू ही करता है। अब वो बेचारा इंस्पेक्टर कहां पहुंचा, टीचर के, प्रिंसिपल के पास, आपके स्कूल में क्या हो रहा है, मैं पूछ रहा हूं शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो बच्चा कहता मैंने नहीं तोड़ा, और टीचर कहता पक्का तूने ही तोड़ा है। तो कहा कि धनुष टूट गया, कोई बात नहीं, इस बात को ज्यादा बढ़ाओगे तभी तो धनुष ही टूटा है, बच्चे स्ट्राइक कर देंगे, खिड़कियां टूट जाएंगी, कुर्सी बेंच टूट जाएंगे, स्कूल में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस बात को यहीं जाने दो, धनुष जिसने भी तोड़ा है कोई मतलब नहीं है। कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल को क्या हो गया है, तो गया शिक्षा मंत्री के पास, इसमें कौन है भगवान जाने, कौन है भाई शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, कहा आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो कहा भाई मैं पूछ रहा हूं शिव का धनुष किसने तोड़ा, बच्चा कहता मैंने नहीं तोड़ा, टीचर कहता तूने ही तोड़ा, प्रिंसिपल के पास जाता हूं तो प्रिंसिपल कहता है अरे बात को जाने दो, अभी तो धनुष ही टूटा है, कल तो बच्चे स्ट्राइक कर दिए तो दंगा फसाद करके सारे स्कूल का तहस नहस कर देंगे। तो कहा मंत्री ने टीचर प्रिंसिपल ठीक ही तो कहता है, तुम वहां से बिल बनवा के भिजवा दो, धनुष टूटने का कितना नुकसान हुआ, यहां से मैं पेमेंट करवा दूंगा, सैंक्शन कर दूंगा। तो आपको हंसी आ रही है, क्या किया कि बच्चा जो बोलता है मैंने नहीं तोड़ा, तो हम उस बच्चे की तरह बन जाओ, आप भी कह दो मैंने नहीं किया, क्या करना, किसी ने भी किया हो कोई भी ने किया हो मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो वहां, तो आप उस कर्म के कर्तापन से रहित तो हो जाओगे, और कर्तापन के रहित तो होते ही आप भोक्तापन से भी क्या हो जाओगे, रहित तो हो जाओगे। इसलिए भगवान ने कहा ना, अरे तू मेरे ऊपर डाल दे, सब कुछ करने वाला कौन हूं, मैं हूं, जबकि मैं भी नहीं हूं, लेकिन मेरे ऊपर डालने से तू तो बच जाएगा, नहीं बच जाएगा बताओ, तू तो बच जाएगा, नहीं मैंने नहीं किया तू तो बच जाएगा, अरे प्रकृति पे डाल दे। अब भगवान नहीं कहना प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, एक प्रकृति में 3 गुण चलते हैं संसार में, सत रज और सारे संसार इन्हीं गुणों के अधीन होकर के सीधा पर्वत होकर काम कर लेता है, कभी कभी सत्य का विस्तार होता है तो खूब पूजा पाठ जप तप करने की इच्छा होती है, कभी रजोगुण का विस्तार होता है तो लगता है सारे संसार को अपनी मुट्ठी में बंद कर लूं, सब कुछ मैं ही कर लूं, और कभी तमोगुण का विस्तार होता है, आलस्य प्रमाद आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के कर्मों को करने वाले कौन है, देखा रहा नेचर में डाल दो, किस पे डालो, प्रकृति पे डाल दो, भगवान पे डाल दो, अन्यथा कुछ कर्म हो ही नहीं रहे हैं, हुए से दिख रहे हैं। समुद्र में कितनी तरंगे चल रही हैं, लेकिन चलती हुई सी दिखती हैं, लग रहा है सुबह से शाम तक दौड़ रही, कई किलोमीटर यात्रा कर ली होगी, लेकिन हमारी दौड़ तैसे होती है। कभी आप लोग जो वहां गए ना जिम में को होती है जिसपे दौड़ते हैं आदमी है, या साइकिल चलाते हैं तो एक घंटे से साइकिल चला रहे, लेकिन साइकिल कहां की, वहीं की वहीं है, एक घंटे से दौड़ रहे लेकिन वहीं की वहीं है। हम लोग भी देखते हैं सारी दुनिया दौड़ लेते हैं, लेकिन मिलते हैं कहां है, उसी जमीन पे ही मिलते हैं। यहां से हवाई जहाज तोड़ेंगे कहां पहुंच जाएंगे, अमेरिका, लेकिन कहां रहेंगे, उतरेंगे कहां, उसी जमीन पे, वही आसमान, वही जल, वही पृथ्वी, क्या बदला बताओ। बस आपके, हम तो कभी कभी कहते हैं आपको सोते हुए यहां से उठा करके पूरी भारत को ही कोई हनुमान जी आवे उठा करके अमेरिका में रख देवे, तो आप कभी कहोगे क्या मैं अमेरिका में हूं, बताओ, बोलो भाई, क्योंकि आपका अपना परिचय पड़ोसी के घर के साथ है, हमारे घर के सामने पड़ोसी का घर है, यदि है तो मैं वही हूं। तो इसलिए आप कुछ करते हो नहीं, तो अपने इस करते, आप माने आत्मा, यदि आत्मा कुछ करती नहीं और न आत्मा कुछ करवाती है, वह तो क्या रहती है, परम शांत। जब करती नहीं है और करवाती नहीं है तो कर्ता भोक्तापन भी उसमें है ही नहीं, वह तो परम शांत है। इसी को बता रहे हैं 134वें श्लोक में, ये 3-4 श्लोक पढ़ लेते हैं, ये समझ में आ गया तो बहुत आसान है, एक उदाहरण से और समझ लो तब समझ में आ गया। एक संत तपस्या कर रहे थे, वो थोड़ा भक्ति का उदाहरण है, संत तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या में भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट होकर के वरदान मांगने के लिए कहे, बेटा जो कुछ वरदान मांगना हो मांग लो। तो संत उठे तो कहा, भगवान ने एक शर्त किया कि मैं अपनी कृपा से तुम्हें दूं या तुम्हारे अपने बल से तुम्हें दूं, तुम्हारे जो मेहनत किया उस मेहनत का दूं। तो कहा, मैं किसी का भिखारी नहीं हूं, एहसान नहीं लेना चाहता, मैं तो अपने बल से, अपने पुरुषार्थ जो मैंने प्राप्त किया हूं वो बल मेरे, वो चाहिए वरदान। तो कहा, तुम्हारे पुरुषार्थ करने में जितने सहयोगी हैं उनको भी शेयर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बताओ। आप लोग कोई बिजनेस करते हो तो अपने बल पे बिजनेस करते हो, शेयर मार्केट से सारा पैसा इकट्ठा करके उनका पैसा लगा हुआ पब्लिक का, बगे बगे आपका अपना छोटा बिजनेस है तो अपने पैसे पे किए हो, लेकिन बड़ा यदि फैक्ट्री चलाओगे तो उसमें पैसे किसके रहते हैं, हजारों, अरे 100 रुपए वाले का भी हिस्सा है, मान लो इतने पता नहीं, हम तो जानते नहीं कितने का खरीदना पड़ता है, 100 का शेयर है तो उसका भी हिस्सा है, 1000 का है उसका भी हिस्सा है, तो उसके शेयर होल्डर कितने हैं बताओ। तो जो उसका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सब में जाएगा कि अकेले वो खा जाएगा। तो आपने जो तप किया है, तप रूपी पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ में जितने शेयर होल्डर हैं उन सबको उसका फल मिलना तो नहीं मिलना चाहिए, बोलो भाई। तो संत ने, वो भगवान ने पूछा, सबको बुला लो, ओ कहा भाई सबको शेयर को मिलना तो नहीं मिलना चाहिए, कहा सबको मिलना चाहिए, तो कहा कि फिर उनको बुलाया जाए, तो कहा उनको बुलाया जाए, बुलाया गया। जिस पृथ्वी पर बैठ के तपस्या किए थे वो पृथ्वी भी उसकी शेयर होल्डर ही नहीं है बताओ, जिस श्वास को लेकर के तुम तपस्या किए थे वो पवन देवता, जो जल, जो अनाज, उस अनाज को पैदा करने वाला जो किसान, जो बैल, यहां तक कि जो पक्षी उस अनाज को खाया भी नहीं था उसने भी उसकी क्या किया, खा लेता तो, यहां तक कि उस सिंचाई वाले पानी को पहुंचाने वाले इरिगेशन के कर्मचारी, मतलब पूरी लंबी लाइन लग गई किसकी, बेचारे के ऊपर शेयर वाले इतने हो गए कि कर्जा उसके ऊपर और आ गया। इसलिए भाई अपने पुरुषार्थ से आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, जबरदस्ती हम करने करते। अब आप खुद सोचो, आपका बच्चा इंजीनियर बना, उस बच्चे की बुद्धि, उसको टीचर, स्कूल, मतलब सब कुछ उसमें क्या है, पुस्तक बनाने वाला, पुस्तक छापने वाला, पुस्तक लिखने वाला, वो स्याही बनाने वाला, सबके सब क्या हो रहे हैं उसमें सहभागी बन रहे नहीं बन रहे हैं। तो यदि सबका फायदा दो, सबको करो, तो हमारे पास उल्टा क्या होगा, फायदा के बजाय कर्जे में हमारे और आ जाएंगे। इसलिए भाई अपने आप को कर्ता न मान करके क्या रहो, क्या रहो, एक कर्तापने को किसी के ऊपर डाल दो। पड़ोसी ने किया होगा, प्रकृति ने किया होगा, भगवान ने किया होगा, अपने आप हुआ होगा, अथवा क्या करना, कुछ हुआ ही नहीं हुआ सा दिखा, कुछ भी मान के चलो, तो आप उस कर्तेपन से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और जैसे कर्तेपन से मुक्त हो गए तो आप भोक्तापन भी नहीं लाओगे। अगला श्लोक 134वां, अब बहुत आसान है, इसको पढ़ लो। लोहे हुत भुग व्याप्ते लोहांतर ताड्यमाने पी तस्य अंतर्गत वन्य किम स्यात् निर्घातजम् दुःखम्। लोहे हुत भुक भागते, लोह में हुत भुक माने अग्नि से व्याप्त कोई लोहा है, लोहा लाल गरम लोहा है, उस लोहे के पिंड को दूसरे लोहे से हमने क्या किया, खूब पिटाई किया, तो पिटाई करने के बाद तस्य अंतर्गत वन्ने, पहले वाले लोहे के अंतर्गत रहने वाला जो कौन है, लोहा है, अग्नि है, उस अग्नि को क्या पिटाई का दुख लगेगा क्या, या उस पिटाई से उस अग्नि में कोई विकार आएगा क्या? तो विकार किस में आएगा, लोहे में तो आएगा लेकिन अग्नि में। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देते हैं, निष्ठुर कुठार घात ही काष्ठे संचिद्य माने अपी अंतर्वर्ती वन्नी किम घातई छिद्यते तदवत। कहते निष्ठुर कुठार घातई, निष्ठुर माने कठोर, कुठार माने कुल्हाड़ी के आघात से, काष्ठे संचिद्य माने अपी कोई लकड़ी को आपने छेद कर दिया, घात प्रतिघात से लकड़ी क्या किया, छिद हो गई, तो उस लकड़ी के भीतर रहने वाली जो अग्नि है वह अग्नि क्या उस आघात प्रतिघात से उस अग्नि में छेद हो जाएगा क्या, किसमें छेद हुआ, लकड़ी में छेद हुआ, लेकिन क्या हुआ, अग्नि में कोई छेद नहीं हुआ। ये दो उदाहरण हो गए, उस उदाहरण से दृष्टांत से दृष्टांत समझा रहे हैं। तनु संबंधात जाती सुख दुखै लिप्यते न आत्मा द्युते स्तुति अपि भूयो अनस्नन अन्यो अभिचाकसीत्यादि। तनु संबंधात जाती है, कहते शरीर के संबंध से ही सुख दुख पैदा होता है, ध्यान देना किससे, हम तो कहते हैं कि जिसके जिसके साथ संबंध बनाओगे उस संबंध बनाने से ही व्यक्ति क्या हो जाता है, सुखी अथवा दुखी हो जाता है। पड़ोस का दुश्मन होए, पड़ोसी आपका दुश्मन होए, उसके यहां कोई चीज मिले अथवा कोई चीज नुकसान हो जाए, आपको क्या कोई सुख दुख होगा क्या, अरे पड़ोसी की बात छोड़ दो, आप पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो भूकंप आ गया पाकिस्तान में हजारों मर गए तो आपको क्या होता है, अच्छा हुआ क्यों बोलते नहीं बोलते, क्योंकि आपका वहां मम बुद्धि नहीं है, मम बुद्धि न होने से क्या है, लेकिन द्वेष बुद्धि है इसलिए अच्छा हुआ। यदि मम और राग द्वेष दोनों का त्याग कर दो तो थोड़ा सा सामान्य दुख तो होगा कहीं भी कुछ होवे, लेकिन विशेष दुख, अच्छा वहां हो गया तो, अच्छा वही चीज घटना मान लो यूपी में घटित हो गई तो थोड़ा सा दुख देगा, और यूपी के बाद महाराष्ट्र में घटित हो गई तो हाँ? थोड़ा ज्यादा होगा, अब मुंबई में हो गई तो और अपने घर में हो गई तो अपने शरीर के साथ हो गई तो कहने का भाव है कि जितनी जितनी मात्रा में हमारी मम बुद्धि बढ़ती जाएगी उतनी उतनी मात्रा में हमें दुख भी होता जाएगा, ये पक्का जान लेना। अनात्म वस्तुओं के साथ जितनी मात्रा में हमारा संबंध प्रगाढ़ होता जाएगा उतनी मात्रा में हमारा दुख भी, इसे बता तनु संबंधात जाता ही है। शरीर के संबंध होने से ही सुख दुख होता है, यदि शरीर का संबंध न होवे तो सुख दुख से आप क्या हो। मुंबई के लोग नारियल खूब देखे हैं, लेकिन यहाँ तो पानी वाला नारियल है, बड़ी मुश्किल है। एक नारियल होता है जो प्रसाद चढ़ाते हो, जिसमें गिरी चिपकी होती है, किसके साथ है, खोल के साथ है। यदि खोल को तोड़ो तो क्या टूट जाएगा, नारियल भी टूट, गिरी भी अंदर की टूट जाएगी, नहीं टूटेगी। यदि वही उधर यूपी बिहार एमपी में सूखा नारियल मिलता है, जिसका वो क्या करते हैं कद्दूकस करके वो बनाते हैं लड्डू उड्डू बनाते हैं, है? तो जो सूखा नारियल है उसके ऊपर भी खोल है, ये अब खोल को तोड़ो धक्का मारो तो क्या होगा, देखना। वजन से हल्की चोट उसमें लगेगी, किसमें हल्की चोट, गोले में लगेगी नहीं लगेगी भाई, जब यूं मारने जा रहे हो अब, जिसे इसमें डिब्बी भरी है, दवाई भरी है नहीं, तो अब ऐसे जा रही तो दवाई कहां होगी, नीचे होगी ऊपर होगी, नीचे सतह में है तो नारियल की गिरी नीचे की सतह होगी नहीं होगी, तो जैसे मैंने मारा तो क्या हुआ, चोट किस पे लगी, खोल पे, अब खोल पे लगी तो नारियल की गिरी उछल करके ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी, और नारियल की गिरी में चोट नहीं लगेगी, टूटेगा कौन, खोल टूटेगी, नारियल साबुत का साबुत बाहर निकल आएगा। ऐसे ही संसार में जब आप जाते हो ना, तो किसी ने अपमान कर दिया है तो एक झटका तो लगता है, नहीं लगेगा, अचानक आप यात्रा कर रहे हो किसी ने धक्का दे दिया तो झटका लगे, नहीं लगेगा, लेकिन ज्ञानी तुरंत संभल जाता है, तुरंत अपने शरीर से क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, सोच देता है दुख सुख तो क्या है, ये शरीर का है, मान अपमान किसका है, शरीर का है, हम तो क्या है, असंग निर्लिप्त आत्मा है। यदि उसने निंदा किया मत निंदया, यदि पजनोसी, यदि मेरी निंदा से आदमी सुखी होवे, तो भाई देखो दूसरे को सुखी करने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता है, बोलो भाई, चाय नाश्ता कॉफी बिस्कुट क्या क्या गिफ्ट देने पड़ते हैं क्या करने के लिए। यदि मेरी निंदा करने से ही व्यक्ति कोई सुखी हो जाए तो बता, बिना मेरे किसी प्रयत्न के दूसरे को सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देते यार मेरे ऊपर बड़ी कृपा है कि मेरे जेब से पांच पैसा भी खर्चा नहीं हुआ और तू मेरी निंदा करके कम से कम शांत तो है कि नहीं है। अरे ध्यान देना, और यदि आत्मा की निंदा करता है तो मेरी आत्मा तेरी आत्मा अलग, तो तू अपने आप की निंदा कर रहा है, अपने आप की निंदा कर रहा है, तो इस तरह से ऐसा विचार करके व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, शांत। अपने आप की जो निंदा करे उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हंसना चाहिए, हंसी आती है, सही बता रहा हूं। यदि ज्ञान हो गया तो, हमारा भाई स्कूल जा रहे थे, प्राइमरी में थे, तो एक दिन हमारी भैया से लड़ाई हो गई, भाई से, तो मैंने उसको गाली दे दिया, वो भी माँ की गाली दे दिया, बच्चे को गाली का मतलब ही नहीं, माँ की गाली दे दिया, और बड़े भाई ने शिकायत दे दिया माँ से या बाप से, किसने मेरे को ऐसा कहा, पिटाई की तेरी माँ, उसकी माँ अलग है क्या, एक ही तो है, यदि उसकी माँ की गाली दिया तो किसकी माँ की गाली हो गई, मेरी माँ की गाली। तो कहने का अभाव, यदि आत्मा की निंदा किया तो उसकी आत्मा की निंदा किया, किसकी निंदा किया, अपनी आत्मा की निंदा किया। आज यदि शरीर की निंदा करता है तो भाई शरीर के पीछे तो मैं भी पड़ा हुआ हूँ, हम भी इसकी निंदा करता हूँ, ये तो तू मेरा सहायक है, सहयोगी है, इसलिए चल आओ निंदा कर, हम भी आओ इसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। तो समझना, ऐसे व्यक्ति को एक झटके में थोड़ा सा दुख तो लगता है, लेकिन तुरंत ही वह दुख क्या हो जाता है, समाप्त तो हो जाता है, उस दुख का प्रभाव पड़ता तनु संबंधात। इसलिए हम कहते हैं सुख दुख से यदि ऊपर उठना है तो क्या करना है, इसके संबंधों से भी क्या हो जाओ, ऊपर उठ जाओ, तो न लिप्तते आत्मा, तो आत्मा सुख दुख से लेपायमान होगी, क्योंकि आत्मा में सुखी दुख ही नहीं, संबंध बना के सुखी दुखी हो जाता है, यदि संबंध छोड़ देवे तो सुख दुख से। ऐसा श्रुति भी कहती है, ऐसा श्रुति भी कहती है, क्या श्रुति कह रही है, आपने सुनाई है, द्वास सुपरंगा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिपस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अन्नम अनसनन अन्यो अभिचाकसीती। दो पक्षी हैं, दोनों में घनिष्ठ प्रेम है और दोनों क्या है, मित्र हैं। एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन एक पेड़ के स्वाद फल को खाता है और दूसरा न खाते हुए केवल क्या करता है, देखता मात्र है। ते जानना प्रकृति ही महावृक्ष है, इस पर भगवान और जीवात्मा दोनों आरूढ़ हैं और दोनों का संबंध भी सनातन है, एक ही है, सखापन है। लेकिन जीवात्मा जो है इसके साथ संबंध बना करके सुख दुख का क्या बनता है, भागी बनता है। असाक्षी जो है चेतन आत्मा, वह उसके साथ रहता हुआ भी, सुख दुख का साक्षी बना हुआ रहता हुआ भी, वह क्या रहता है, शांत रहता है, निर्लिप्त रहता है। उससे उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। कैसे निर्लिप्त होता है इसको बता रहे हैं 137वें श्लोक में। आज श्लोक ज्यादा हो रहे हैं लेकिन भाव समझना है और कुछ नहीं है। निशी वेशमनी प्रदीपे दीप्यति चौरस्तु वित्तम अपहरति ईरयति वारवति वातम दीपम किम तथात्मापि। निशी माने रात्रि के समय, निशी माने क्या हुआ, रात्रि में, वेशमनी रात्रि में, वेशमनी माने घर के भीतर, वेश माने वह घर, तो घर के भीतर। प्रदीपे माने दीपक के प्रकाशित होने पर, प्रदीपे दीप्यति दीपक के प्रकाशित होने पर, रात्रि में दीपक प्रकाशित हो रहा है। चोरस्तु वित्तम अपहरति, अरे आपके घर में चोर घुस गया और चोर घुस करके धन को क्या कर रहा है, ले जा रहा है। अब बताओ धन के, चोर धन को ले जाता है, बताओ वह दीपक उस चोर को क्या चोरी के लिए प्रेरित करता है क्या, अथवा उसको चोरी से रोकता है क्या, बोलो भाई। उसी प्रकार से आत्मा भी चित्त आदि इंद्रियों को उसके व्यापार में न नियुक्त करता है न उससे वियुक्त करता है। आत्मा बस उसकी उपस्थिति मात्र से ही सब अपने अपने कामों में क्या करते हैं, लग जाते हैं। लेकिन वो कभी न किसी को लगाता है न किसी को क्या करता है, न लगाता हो इसी बात नहीं है, वो एकदम शांत। अब उसकी सत्ता से सब आंख रूप देखना शुरू कर देगी, कान है शब्द सुनना शुरू कर देगा, नाक क्या करेगा गंध लेना शुरू कर देगा, लेकिन वह कभी किसी को कुछ लगाता नहीं है, बल्कि वह साक्षी शांत उसको देखता रहता है। हम भी कहते हैं आप संसार का खेल देखते नहीं देखते। एक बार मैं खंभात में था तो दो माताएं लड़ाई लड़ रही थी, युद्ध कर रही थी आपस में, हम में गुजराती कम समझ में आती थी तो खड़े होकर के बड़े ध्यान से वो क्या बोल रहे हैं सुन रहा था, जानने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मैं किसी के पक्ष का भागी नहीं था ना, तो न मैं किसी का अच्छा लग रहा था न कि मैं किसी को बुरा समझ रहा था। मैं कथा करने गया तो बताया आज भाई लड़ाई हो रही थी, मैं बड़ा साक्षी भाव से देख रहा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था, बस लड़ाई लग रहे है ये समझ में आ रहा था, गुजराती भाषा में लड़ाई लग रहे हैं। तो कहा आपको स्वामी जी पूछ लेना चाहिए था कि भाई हिंदी में बात करके बता दो तुम क्या बोल रहे हो दोनों पक्ष। तो जैसे हम वहां साक्षी बने थे, ध्यान देना, या आपके घर में जैसे लड़ाई होती है बाहर आप छत पे क्या करते हो, साक्षी बने देखते नहीं देखते, उसी तरह से शरीर के साथ भी यदि कोई विकार हो जाए वहां भी आप क्या बन जाओ, साक्षी बन जाओ, तो आप परम शांत। हमारे भगवान कृष्ण यही तो किए हैं। भगवान कृष्ण ने एक बार समझाया अपने बच्चों को, भाई लड़ाई उड़ाई मत करो बहुत हो गई, लेकिन जब देखे भगवान के बच्चे भगवान की बात मान ही रहे थे, भगवान ने क्या किया, एक पांव को दूसरे पांव पे क्या किया रख करके साक्षी बन करके सबको कटते मरते क्या कर रहे हैं। तो आप भी इस संसार में क्या बन जाओ, एक पांव को उठा करके एक पांव पे खड़े हो जाओ। अभी हम किस पांव पे खड़े आए बोलो भाई, दो पांव पे, दो पे नहीं खड़े होना, किस पे खड़ा होना है, एक पे। एक माने क्या हुआ, अभी माया संसार में भी है और थोड़ा कहां है, परमात्मा में भी है। भगवान ने एक पांव को क्या किया, इसलिए भगवान की एक मुद्रा मैं बता रहा हूं कि हमारे आजकल इतने मंदिर बन रहे हैं, हमारे भगवान की बैठने की मुद्रा में भी वेदांत है। खड़े होने की मुद्रा में भी क्या है, वेदांत सहित भगवान कृष्ण खड़े हैं दो पांव पे, एक पांव पे, एक पांव दूसरे पांव के ऊपर तिरछा आलंबित है। तो जिस पांव पे खड़े हैं वो पांव है क्या, अद्वैत निष्ठा, अपना स्वरूप है। और दूसरा पांव क्या है, माया का काम है, वह माया उसके ऊपर आलंबित है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा महत्व दिया ही नहीं है। इसलिए क्या करना, आप भी कहां बैठो, भगवान शंकर पार्वती कहां किया, वो दाएं के बाएं, बायां हम किसको रखते हैं, जिसको श्रद्धा करते हैं, जिसको सम्मान देते हैं, या जिसकी उपेक्षा करते हैं। तो पत्नी की उपेक्षा नहीं कर रहे, नहीं महिला मंडल वाली आके लड़ाई करेंगी, टीवी में रोज आ जाएगा मेरा तो, इसलिए वहां वो नहीं है, क्या बोलते हैं, महिला मंडल नहीं, वो महिला आयोग वाले भाई, महिला मंडल वाले नहीं, महिला आयोग वाले। यहां पत्नी की उपेक्षा नहीं किया है, संसार की उपेक्षा किया है। उमा अथवा पार्वती किसकी प्रतीक है, इस संसार की प्रतीक है। उन्होंने संसार को सत्ता तो दिया है, लेकिन क्या किया है, बहुत महत्व नहीं दिया है, अनादरात उसको बहुत महत्व नहीं दिया है। ऐसे हम संसार को बहुत महत्व न देकर के कहां निष्ठ हुए, अद्वैत अपने स्वरूप पर निष्ठ हुए, इस संसार की हर लीला को क्या करते रहो, साक्षी भाव से देखते रहो, तो संसार का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यही तो राम तीर्थ, जब गए राम तीर्थ को गाली मिली अमेरिका में, तो आगे कमर हम खूब नाचते हैं, जैसे हम दूसरे की गाली को सुनकर के नाचते हैं, खुशी होते हैं, आज राम तेरे को भी खूब गालियां मिली, कैसा लगा तेरे को, तो अंदर से आनंदित हो रहे हैं, यदि शरीर को भी अपमान हो रहा है तो भी। एक श्लोक और है, चलो इस पे कल कर, थोड़ा सा देख लो, बहुत जल्दी उसे मैं पहले देख ही लेता हूं, कल आऊंगा तो फिर थोड़ा सा पहले बताऊंगा। गेहांते देहवशात कस्मिंश्चित समुदते विपन्ने वा दीपस्तुष्यति अथवा खिद्यति किम तदवत आत्मा अपि। सीधी सी बात, गेहांते घर के भीतर दैववशात प्रारब्ध के बल से कस्मिंश्चित समुदते कोई चीज पैदा हो गया, विपन्ने वा अथवा कोई चीज क्या हो गया, खो गया, दुखी हो गया, नष्ट हो गया, तो दीपक को क्या खुशी होगी क्या, अथवा दीपक को क्या प्रसन्नता हो, दुख होगा क्या, बोलो नहीं होगी ना। उसी प्रकार से तद्वत आत्मा ही, उसी प्रकार से आत्मा भी इस संसार में कुछ जुड़ गया तो, इस संसार से कुछ चला गया तो, उस आत्मा को न कोई सुख मिलता है न कोई क्या मिलता है, दुख, वह हमेशा शांत आनंद में ही रहता है। अब हम देखो थोड़ा ऊपर उठो तो हो जाएगा। एक बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आपके वो छोटे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, कौन सा मार्केट गेम खेलते हैं ना, हाँ व्यापार वाला गेम खेलते हैं, आपके पास तो हजार के नोट हैं, उन बच्चों के पास दस दस हजार के नोट होते हैं, पचास पचास हजार के नोट होते हैं। अब बता, एक बच्चा कहता मम्मी आज मेरे को भैया को हरा के पचास हजार पा गया, फायदा हो गया। अब बता आपको उस हार और जीत में, लूडो खेलते हो, बच्चे तो कितना जीत हाथ मनाते हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ आप भी खेलते हो, लेकिन आपको कोई जीत हार होती है क्या। ऐसे ही संसार में कोई कहीं दौड़ रहा, कोई हाय तोबा कर रहा, कोई नाच रहा, कोई कुछ कर रहा है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है ना, इस संसार के न कुछ पाने का, न कुछ खोने का, न जीने का, न मरने का, हर अवस्था में न कुछ करने का, न कुछ न करने का, हर अवस्था में क्या रहता है। हम तो कभी कहते सब कर ले लिया, अरे टाइम हो रहा, बहुत बड़ा मुश्किल काम है, हम नहीं किए तभी दूसरा किया, हम ही कर लेते दूसरे का मौका मिलता, इसलिए हम नहीं करेंगे तो भी दूसरा कर लेगा। सबका अपना एक अलग स्वभाव है, अलग नहीं चले, सब अपनी सृष्टि से अपने सत्ता चल रहा, हम तो शांत भाव से क्या कर रहे हैं, साक्षी बने इस जगत को देखो, लीला देखा करो और क्या। इतनी बढ़िया फिल्म बन रही तब भी लोग वो सलमान खान की फिल्म देखने के लिए 500 रुपए का टिकट देते हैं, लेकिन इस जगत की फिल्म को कोई देखना ही चलता, जब किसका निर्देशक कौन है, परम ब्रह्म परमात्मा, कितना बढ़िया जगत है, इसको देखो तो। इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा भी मिल जाएगी। चलो हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब कल आपकी सर्वव्यापकता बताया जाएगा।